जिंदगी की रोटी यूहन्ना की अंजील 6 आयत 22 से लेकर 70 तक। ईसा मसीह मौजज़ों का मालिक है। एक दिन उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर उनसे 5,000 मर्दों को बाल बच्चों समेत खाना खिलाया। लोग हक्का बक्का रह गए। तब वो एक दूसरे से कहने लगे, ये तो हमारा बादशाह होना चाहिए। अगर ये हमारे आगे आगे चले तो हम क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ईसा मसीह को सियासत से सख्त नफरत है। ऐसी बातें बुलंद होने लगी तो उसने अपने करीबी शागिर्दों को एकदम कश्ती में बिठाकर झील के पार भेज दिया। खुद वो अकेले किसी पहाड़ पर चढ़ गया। अंधेरा छा गया तो वो तूफानी लहरों पर चलते हुए शागिर्दों के पास आया। तब वो मिलकर कफरनहूम चले गए। जो लोग पीछे रह गए थे वो अगले दिन जाग उठे। अपनी आंखों को मल मल कर वो उस्ताद को तलाश करने लगे तो कहीं ना पाए। काफी देर के बाद पता चला कि वो झील के पार कफरनहूम शहर में है। तब वो भी रवाना हुए। कफरनहूम पहुंचने पर उन्होंने पूछा, उस्ताद आप किस तरह यहां पहुंच गए। ईसा मसीह ने क्या जवाब दिया? पहली बात, जिंदगी की रोटी पाओ। जिंदगी की रोटी पाओ। वो सीधे असल बात पर आ गया। फरमाया, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि इलाही निशान देखे हैं, बल्कि इसलिए कि तुमने जी भर कर रोटी खाए है। यूहन्ना की अंजील 6 आयत 26। वो इससे क्या कहना चाहता था? वो ये कहना चाहता था कि तुम लोग सिर्फ दुनियावी सोच रखते हो। मैंने तुम सबको खाना खिलाया, लेकिन तुमने ये देखकर रूहानी नतीजा ना निकाला। तुमने सिर्फ ये नतीजा निकाला कि इस बंदे को हमारा बादशाह बनना है, यही हमारी दुनियावी जरूरियात पूरी करे। लेकिन मेरे मौजज़ों का मकसद और है। वो इलाही निशान है। ये मौजज़े निशान क्यों हैं? ये इसलिए निशान है कि ये जाहिर करते हैं कि ईसा मसीह को इलाही इख्तियार है, कि उसे आसमान की बादशाही लाने का इख्तियार है। लेकिन ये बादशाही दुनियावी नहीं है, ये रूहानी है। ये लोगों के दिलों को तब्दील करेगी, उन्हें अगली दुनिया के लिए तैयार करेगी। लोगों को इस रूहानी बादशाही में दाखिल होने की कोशिश करनी चाहिए। उसने फरमाया, ऐसी खुराक के लिए जिद्दोजहद ना करो जो गल सड़ जाती है, बल्कि ऐसी के लिए जो अबदी जिंदगी तक कायम रहती है और जो इब्ने आदम तुमको देगा। यूहन्ना की अंजील 6 आयत 27। लोग उस रोटी के लिए जिद्दोजहद क्यों ना करें जो गल सड़ जाए। आम रोटी खाकर इंसान को अबदी जिंदगी नहीं मिलती है। तो फिर लोग किस रोटी के लिए जिद्दोजहद करें? वो उस रोटी के लिए जिद्दोजहद करें जो अबद तक कायम रहती है। वो क्यों उस रोटी के लिए जिद्दोजहद करें जो अबद तक कायम रहती है? इसलिए कि उसे खाकर इंसान अबद तक जिंदा रहेगा। लेकिन ये रोटी सिर्फ एक ही दे सकता है। कौन ये रोटी दे सकता है? इब्ने आदम। इब्ने आदम कौन है? इब्ने आदम ईसा मसीह का दूसरा नाम है। सो पहली बात यह है कि जिंदगी की रोटी पाओ, अबदी जिंदगी की रोटी पाओ। दूसरी बात, मसीह फरमाता है कि मुझ पर ईमान लाओ, मुझ पर ईमान लाओ। अब लोग सोच विचार में पड़ गए। उस्ताद ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन हम क्या करें ताकि जिंदगी की रोटी पाएं? हम क्या करें जो खुदा को पसंद आए और हमें ये रोटी मिल जाए? किसी वक्त हर इंसान के दिल में ये सवाल उभर आता है कि मैं क्या करूं ताकि अबदी जिंदगी पाऊं। इन लोगों ने भी ये सवाल पूछा, हमें क्या करना चाहिए ताकि अल्लाह का मतलूबा काम करें। ईसा मसीह ने जवाब दिया, अल्लाह का काम यह है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। यूहन्ना की अंजील 6:29। ये क्या काम है जो देखकर खुदा हमें अबदी जिंदगी की रोटी देगा? काम यह है कि हम ईसा मसीह पर ईमान लाएं। क्या गलत काम छोड़ना काफी नहीं? क्या नेक काम काफी नहीं? क्या शरीयत पर अमल करना काफी नहीं? कभी नहीं। ईसा मसीह फरमाता है कि उस पर ईमान लाओ जिसे खुदा ने भेजा है, यानी मुझ पर। एक ही वसीला है जिससे जिंदगी की ये रोटी मिल जाए, ईसा मसीह पर ईमान। अबदी रोटी पाने के लिए ना नेक काम काफी है, ना शरीयत पर अमल। एक ही रास्ता है, ईसा मसीह पर ईमान। ईसा मसीह क्यों फरमाता है कि मुझ पर ईमान लाओ? वो जानता है कि हमारे नेक काम कभी काफी नहीं होंगे। वो क्यों कभी काफी नहीं होंगे? हमारी फितरत इतनी खराब है कि हमारे नेक काम हमें खुदा के सामने मंजूर नहीं करा सकते। हमारी फितरत एक गली सड़ी मछली जैसी है। क्या ऐसी मछली पकाने से ये खाने लायक हो जाएगी? कभी नहीं। क्या हम इसे किसी और तरीके से खाने लायक बना सकते हैं? कभी नहीं। हमारी इंसानी फितरत हमारी अपनी कोशिशों से बहाल हो नहीं सकती। इसीलिए अलमसीह इस दुनिया में नाजिल हुआ, ताकि खुद ही हमें बहाल करे। इसीलिए उस पर ईमान लाना जरूरी है, क्योंकि उस पर ईमान लाने से वो हमें ये अबदी जिंदगी दे सकता है। तीसरी बात, ईसा मसीह फरमाता है, मैं ही जिंदगी की रोटी हूं। क्या लोग मसीह की बात सुनकर उस पर ईमान लाए? नहीं। वो शक में पड़कर कहने लगे, तो फिर आप क्या इलाही निशान दिखाएंगे जिसे देखकर हम आप पर ईमान लाएं? आप क्या काम सरंजाम देंगे? हमारे बाप दादा ने तो रेगिस्तान में मन खाया। चुनांचे कलामे मुकद्दस में लिखा है कि मूसा ने उन्हें आसमान से रोटी खिलाई। ये लोग ईसा मसीह से क्या मांग रहे थे? ये लोग उससे एक इलाही निशान मांग रहे थे। इलाही निशान क्यों मांग रहे थे? मतलब है, वो कोई मौजजा कर दिखाए जो साबित करे कि उसे इलाही इख्तियार है। क्या ईसा मसीह ने अभी अभी एक निशान नहीं दिखाया था? जरूर, उसने 5,000 मर्दों को बाल बच्चों समेत खाना खिलाया था। तो फिर लोग क्यों इलाही निशान मांग रहे थे? यहां वो एक और बात मांग रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मूसा ने हमारे बाप दादा को मन खिलाया। वो सीधे ये बात मांग रहे थे कि ईसा मसीह भी आसमान से मन बरसने दे। मन का ये क्या मौजजा था जो मूसा के जमाने में हुआ था? सदियों पहले जब इसराइली अब रेगिस्तान में सफर कर रहे थे, तो खुदा ने उन्हें मन खिलाया था। मन क्या था? ये दाने थे जो आसमान से गिरते थे और जो धनिये की मानंद सफेद थे। मन खाने में शहद से बने केक की मानंद था। देखिए तो रेत खुरूज की किताब 16:31। ये लोग ईसा मसीह से इस किस्म का मौजजा मांग रहे थे। वो क्यों इस किस्म का मौजजा मांग रहे थे? यहूदी रिवायत के मुताबिक अलमसीह की आमद पर मन आसमान से दोबारा गिरेगा। मतलब है, ये लोग चाहते थे कि ईसा मसीह मन बरसाकर साबित करे कि वो आने वाला मसीह है। ईसा मसीह ने जवाब दिया, खुद मूसा ने तुमको आसमान से रोटी नहीं खिलाई, बल्कि मेरे बाप ने। वही तुमको आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि अल्लाह की रोटी वो शख्स है जो आसमान पर से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शता है। यूहन्ना की अंजील 6:32-33। क्या मूसा ने मन खिलाया था? नहीं। خدا باپ نے من کھلایا تھا. یہ پہلی بات ہے. لیکن اب خدا باپ ایک اور قسم کی روٹی دیتا ہے. وہ کس قسم کی روٹی دیتا ہے؟ وہ حقیقی روٹی دیتا ہے. من اور اس روٹی میں کیا فرق ہے؟ من گلنے والی روٹی ہے، جبکہ یہ روٹی ایک شخص ہے، ایک شخص جو ابدی زندگی بخشتا ہے. یہ کون سا شخص ہے؟ یہ عیسیٰ مسیح ہے، وہی ابدی زندگی کی روٹی ہے. حقیقی من کا معجزہ اسی میں ہو چکا ہے. اب تک سننے والوں کو بات سمجھ نہ آئی. انہوں نے کہا، خداوند ہمیں یہ روٹی ہر وقت دیا کریں. تب عیسیٰ مسیح نے صاف فرمایا، میں ہی زندگی کی روٹی ہوں، جو میرے پاس آئے اسے پھر کبھی بھوک نہیں لگے گی، اور جو مجھ پر ایمان لائے اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. یوحنا کی انجیل 6 آیت 35. صرف اور صرف عیسیٰ مسیح زندگی کی روٹی ہے، اسی سے ابدی زندگی ملتی ہے. کوئی اور روٹی یہ نہیں دلا سکتی. میں دہراتا ہوں، عیسیٰ مسیح فرماتا ہے کہ زندگی کی روٹی پاؤ، دوسرے وہ فرماتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، تیسرے وہ فرماتا ہے کہ میں ہی زندگی کی روٹی ہوں. اب ایک چوتھی بات سامنے آتی ہے. یہ نجات پکی ہے، یہ نجات پکی ہے، یہ روٹی کھانے سے نجات یقینی ہے، پکی ہے. کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ عدالت کے دن بچیں گے؟ سیدھی سی بات یہ ہے، کوئی اور روٹی ہمیں قیامت کے دن زندہ نہیں کرے گی، کوئی اور روٹی ہمیں عدالت کے دن محفوظ نہیں رکھے گی. خداوند عیسیٰ نے فرمایا، جتنے بھی باپ نے مجھے دیے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے، اور جو بھی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا. یوحنا 6 آیت 37. یہاں عیسیٰ مسیح کے کردار کا ایک ٹھوس پہلو نظر آتا ہے. کیا پہلو ہے؟ چرواہے کا کردار نظر آتا ہے. وہ اچھا چرواہا ہے جو اپنی ہر بھیڑ کی فکر کرتا ہے. جس کو بھی خدا باپ نے اس کے سپرد کیا ہے اسے وہ ہلاک نہیں ہونے دے گا. کتنی تسلی کی بات! اس کو اور پکا بنا کر اس نے فرمایا، صرف وہ شخص میرے پاس آ سکتا ہے جسے باپ میرے پاس کھینچ لایا ہے. یوحنا 6 آیت 44. ہم اپنی ہی کوششوں سے نجات نہیں پا سکتے، خدا باپ خود ہمیں کھینچ لاتا ہے. جب ہم عیسیٰ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو یہی بات ہمیں دلاسا دیتی ہے، کیونکہ یہ نجات ہماری کمزور کوششوں پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ خدا باپ کے پکے وعدے پر. تب ہمیں پوری تسلی ہے کہ ہم عدالت کے دن بھی محفوظ رہیں گے. میں دہراتا ہوں، عیسیٰ مسیح فرماتا ہے کہ زندگی کی روٹی پاؤ، دوسرے وہ فرماتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، تیسرے وہ فرماتا ہے میں ہی زندگی کی روٹی ہوں، اور چوتھے وہ فرماتا ہے کہ روٹی کی یہ نجات پکی ہے. اب وہ ایک پانچویں بات فرماتا ہے، کھاتے پیتے رہو، کھاتے پیتے رہو. عیسیٰ مسیح نے ایک حیرت انگیز بات فرمائی، میں ہی زندگی کی وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتر آئی ہے، جو اس روٹی سے کھائے وہ ابد تک زندہ رہے گا، اور یہ روٹی میرا گوشت ہے جو میں دنیا کو زندگی مہیا کرنے کی خاطر پیش کروں گا. یوحنا کی انجیل 6 آیت 51. من کھانے سے اسرائیلیوں کو ابدی زندگی نہ ملی، کیا ابدی زندگی کی یہ روٹی بھی اسی طرح ہے؟ نہیں، جو بھی زندگی کی یہ نئی روٹی کھائے اسے ابدی زندگی حاصل ہے. ساتھ ساتھ عیسیٰ مسیح نے ایک اور بات فرمائی. کیا بات فرمائی؟ یہ روٹی میرا گوشت ہے. یہ روٹی کیوں اس کا گوشت ہے؟ اس وقت جب اسرائیلی ریگستان میں تھے तो वो न सिर्फ रोटी बल्कि गोश्त के लिए भी तरस रहे थे। देखिए तौरेत खुरूज की किताब 16 आयत 3। उस वक्त खुदा ने उनकी सुनी। उसी शाम बटेरों के गोल आए जो पूरी खैमा गाह पर छा गए। तब इसराइलियों ने जी भर कर गोश्त खाया। अब ईसा मसीह फरमाता है कि मैं जिंदगी की रोटी भी हूं और गोश्त भी। मन और गोश्त के मोजज़े मुझ में हुए हैं। लेकिन अब ईसा मसीह ने एक ज्यादा चौंका देने वाली बात कही। मेरा गोश्त हकीकी खुराक और मेरा खून हकीकी पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। यूहन्ना 6 आयत 55 और 56। इससे ईसा मसीह क्या कहना चाहता था? गोश्त खाने और खून पीने का ख्याल तो घिनौना सा लगता है। हम तो किस तरह उसका गोश्त और खून खा पी सकते हैं? इससे ईसा मसीह अपनी सलीबी मौत की तरफ इशारा कर रहा था। थोड़े दिनों के बाद उसे अपनी जान हमारी खातिर देनी थी, यानी उसे अपना गोश्त और खून कुर्बान करना था। उसे क्यों अपने आप को कुर्बान करना था? उसे हमारे गुनाहों की सजा उठानी थी ताकि हमें नजात मिल जाए, और ये सजा सख्त थी, ये सजाए मौत थी। लेकिन वो गोश्त खाने और खून पीने पर बहुत जोर दे रहा है। खाने और पीने पर इतना जोर देने से वो क्या कहना चाहता है? इसका मतलब है ये बहुत जरूरी है कि हम हर लम्हा उसकी इस कुर्बानी से अबदी जिंदगी पाते रहें। लाजम है कि हम हर लम्हा उसकी कुर्बत में रहें, हर लम्हा उससे लिपटे रहें, हर लम्हा उसे तकते रहें, हर लम्हा उसकी बातें जज़्ब करते रहें। तब ये अबदी जिंदगी हमारी रगों में दौड़ती रहेगी। तब हम ईसा मसीह जैसे बनते जाएंगे। चाहे हमारी जिंदगी कितनी दुखी क्यों ना हो, हमारे अंदर उसका सुकून और उसकी तसल्ली रहेगी। तब उसका नूर हमारी जिंदगी में चमकती दमकती रहेगी। जब बल्ब में बिजली हो तो वो जलता है, बिजली बंद हो तो लाइट नहीं जलती। इसी तरह अगर हमारी ईसा मसीह के साथ रफाकत आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाए तो हम इस भरपूर जिंदगी से महरूम रह जाएंगे। तब हमारी जिंदगी दोबारा गुनाह से भर जाएगी। तब हमारा दिल अंधेरा हो जाएगा। एक आखिरी बात, पहले ईमान फिर पहचान, पहले ईमान फिर पहचान। ईसा मसीह की ये बातें बहुत से लोगों को नागवार लगी। ये बातें उनको क्यों पसंद नहीं थी? वो ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे कि ईसा मसीह जिंदगी की रोटी है, कि उस पर ईमान लाने से अबदी जिंदगी मिलती है, कि वो न सिर्फ आम किस्म का गुरु है बल्कि आसमान की हकीकी रोटी, वो रोटी जिससे इस दुनिया और अगली दुनिया में भरपूर जिंदगी मिल जाएगी। अब बहुत से लोग ईसा मसीह को छोड़ने लगे। तब उसने अपने करीबी शागिर्दों से पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो? शमाउन पत्रस ने जवाब दिया, खुदावंद हम किसके पास जाएं? अबदी जिंदगी की बातें तो आप ही के पास हैं, और हमने ईमान लाकर जान लिया है कि आप अल्लाह के कदूस हैं। यूहन्ना की अंजील 6 आयत 68 और 69। पत्रस और दूसरे करीबी शागिर्द उस्ताद की कई बातें समझ नहीं सकते थे, लेकिन बड़ी बात साफ थी, हमारे आका के पास अबदी जिंदगी की बातें हैं, वही अल्लाह का कदूस है। लेकिन हम किस तरह जान सकते हैं कि ईसा मसीह सचमुच अबदी जिंदगी की रोटी है? पत्रस इसका जवाब देता है, ये जानने के लिए अक्ल काफी नहीं है, इसके लिए ईमान जरूरी है। पहले ईमान लाओ तभी जान लोगे। हम खुदावंत का किरदार अपनी अकल से मालूम नहीं कर सकते। पहले ईमान जरूरी है, तभी हम जान लेंगे कि वो अल्लाह का कुदूस है, कि वो अबदी जिंदगी की हकीकी रोटी है। गर्ज ईसा मसीह 6 बातें सिखाना चाहता है। पहले वो फरमाता है कि जिंदगी की रोटी पाओ। दूसरे वो फरमाता है कि मुझ पर ईमान लाओ। तीसरे वो फरमाता है मैं ही जिंदगी की रोटी हूँ। और चौथे वो फरमाता है कि मेरी नजात यकीनी है। पांचवी बात वो फरमाता है कि खाते पीते रहो, मुझे खाते पीते रहो। और आखिरी बात पहले ईमान फिर पहचान, पहले ईमान लाओ फिर पहचान लोगे। यूहन्ना की अंजील 6:22-70 तक। हजूम तो झील के पार रह गया था। अगले दिन लोगों को पता चला कि शागिर्द एक ही कश्ती लेकर चले गए हैं और कि उस वक्त ईसा कश्ती में नहीं था। फिर कुछ कश्तियां तिबरियास से उस मकाम के करीब पहुंची जहां खुदावंद ईसा ने रोटी के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करके उसे लोगों को खिलाया था। जब लोगों ने देखा कि ना ईसा और ना उसके शागिर्द वहां हैं, तो वो कश्तियों पर सवार होकर ईसा को ढूंढते ढूंढते कफरनहूम पहुंचे। जब उन्होंने उसे झील के पार पाया तो पूछा, उस्ताद आप किस तरह यहां पहुंच गए? ईसा ने जवाब दिया, मैं तुमको सच बताता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि इलाही निशान देखे हैं, बल्कि इसलिए कि तुमने जी भर कर रोटी खाई है। ऐसी खुराक के लिए जद्दोजहद ना करो जो गल सड़ जाती है, बल्कि ऐसी के लिए जो अबदी जिंदगी तक कायम रहती है और जो इब्ने आदम तुमको देगा, क्योंकि खुदा बाप ने उस पर अपनी तस्दीक की मोहर लगाई है। इस पर उन्होंने पूछा, हमें क्या करना चाहिए ताकि अल्लाह का मतलूबा काम करें? ईसा ने जवाब दिया, अल्लाह का काम ये है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। उन्होंने कहा, तो फिर आप क्या इलाही निशान दिखाएंगे जिसे देखकर हम आप पर ईमान लाएं? आप क्या काम सरंजाम देंगे? हमारे बाप दादा ने तो रेगिस्तान में मन खाया। चुनांचे कलामे मुकद्दस में लिखा है कि मूसा ने उन्हें आसमान से रोटी खिलाई। ईसा ने जवाब दिया, मैं तुमको सच बताता हूं कि खुद मूसा ने तुमको आसमान से रोटी नहीं खिलाई, बल्कि मेरे बाप ने। वही तुमको आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि अल्लाह की रोटी वो शख्स है जो आसमान पर से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शता है। उन्होंने कहा, खुदावंद हमें ये रोटी हर वक्त दिया करें। जवाब में ईसा ने कहा, मैं ही जिंदगी की रोटी हूं, जो मेरे पास आए उसे फिर कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ पर ईमान लाए उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन जिस तरह मैं तुमको बता चुका हूं, तुमने मुझे देखा और फिर भी ईमान नहीं लाए। जितने भी बाप ने मुझे दिए हैं वो मेरे पास आएंगे, और जो भी मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी पूरी करने के लिए आसमान से नहीं उतरा, बल्कि उसकी जिसने मुझे भेजा है। और जिसने मुझे भेजा उसकी मर्जी ये है कि जितने भी उसने मुझे दिए हैं उनमें से मैं एक को भी खो ना दूं, बल्कि सब को क्यामत के दिन मुर्दों में से फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी यही है कि जो भी फर्जंद को देखकर उस पर ईमान लाए उसे अबदी जिंदगी हासिल हो। ऐसे शख्स को मैं क़यामत के दिन मुर्दों में से फिर जिंदा करूंगा। ये सुनकर यहूदी इसलिए बुड़बुड़ाने लगे कि उसने कहा था, मैं ही वो रोटी हूं जो आसमान पर से उतर आई है। उन्होंने एतराज किया, क्या ये ईसा बिन यूसुफ नहीं जिसके बाप और माँ से हम वाकिफ हैं, वो क्यों कर कह सकता है कि मैं आसमान से उतरा हूं? ईसा ने जवाब में कहा, आपस में मत बुड़बुड़ाओ। सिर्फ वो शख्स मेरे पास आ सकता है जिसे बाप ने, जिसने मुझे भेजा है, मेरे पास खींच लाया है। ऐसे शख्स को मैं कयामत के दिन मुर्दों में से फिर जिंदा करूंगा। नबियों के सहीफों में लिखा है, सब अल्लाह से तालीम पाएंगे। जो भी अल्लाह की सुनकर उससे सीखता है वो मेरे पास आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने कभी बाप को देखा। सिर्फ एक ही ने बाप को देखा है, वही जो अल्लाह की तरफ से है। मैं तुमको सच बताता हूं कि जो ईमान रखता है उसे अबदी जिंदगी हासिल है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा रेगिस्तान में मन खाते रहे तो भी वो मर गए, लेकिन यहां आसमान से उतरने वाली ऐसी रोटी है जिसे खाकर इंसान नहीं मरता। मैं ही जिंदगी की वो रोटी हूं जो आसमान से उतर आई है। जो इस रोटी से खाए वो अबद तक जिंदा रहेगा। और ये रोटी मेरा गोश्त है जो मैं दुनिया को जिंदगी मुहैया करने की खातिर पेश करूंगा। यहूदी बड़ी सरगर्मी से एक दूसरे से बहस करने लगे, ये आदमी हमें किस तरह अपना गोश्त खिला सकता है? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमको सच बताता हूं कि सिर्फ इब्ने आदम का गोश्त खाने और उसका खून पीने ही से तुम में जिंदगी होगी। जो मेरा गोश्त खाए और मेरा खून पिए, अबदी जिंदगी उसकी है और मैं उसे कयामत के दिन मुर्दों में से फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी खुराक और मेरा खून हकीकी पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। मैं उस जिंदा बाप की वजह से जिंदा हूं जिसने मुझे भेजा। इसी तरह जो मुझे खाता है वो मेरे ही वजह से जिंदा रहेगा। यही वो रोटी है जो आसमान से उतरी है। तुम्हारे बाप दादा मन खाने के बावजूद मर गए, लेकिन जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा। ईसा ने ये बातें उस वक्त की जब वो कफरनहूम में यहूदी इबादत खाने में तालीम दे रहा था। ये सुनकर उसके बहुत से शागिर्दों ने कहा, ये बातें नागवार हैं, कौन इन्हें सुन सकता है? ईसा को मालूम था कि मेरे शागिर्द मेरे बारे में बुड़बुड़ा रहे हैं, इसलिए उसने कहा, क्या तुमको इन बातों से ठेस लगी है? तो फिर तुम क्या सोचोगे जब इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था? अल्लाह का रूह ही जिंदा करता है, जबकि जिस्मानी ताकत का कोई फायदा नहीं होता। जो बातें मैंने तुमको बताई हैं वो रूह और जिंदगी हैं, लेकिन तुम में से कुछ हैं जो ईमान नहीं रखते। ईसा तो शुरू से ही जानता था कि कौन कौन ईमान नहीं रखते और कौन मुझे दुश्मन के हवाले करेगा। फिर उसने कहा, इसलिए मैंने तुमको बताया कि सिर्फ वो शख्स मेरे पास आ सकता है जिसे बाप की तरफ से ये तौफीक मिले। उस वक्त से उसके बहुत से शागिर्द उल्टे पांव फिर गए और आइंदा को उसके साथ न चले। तब ईसा ने 12 शागिर्दों से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमाउन पत्रस ने जवाब दिया, खुदावंद, हम किसके पास जाएं? अबदी जिंदगी की बातें तो आप ही के पास हैं, और हमने ईमान लाकर जान लिया है कि आप अल्लाह के कदूस हैं। जवाब में ईसा ने कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक शख्स शैतान है। वो शमाउन इस्करियोती के बेटे यहूदा की तरफ इशारा कर रहा था, जो 12 शागिर्दों में से एक था और जिसने बाद में उसे दुश्मन के हवाले कर दिया।